नमस्कार सुतो, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त, क्योंकि जल ही जीवन है। आज के परिवेश में निरंतर ग्रीष्म ऋतु के तापमान में निरंतर वृद्धि होने से कई तरीके से जल की कई ग्रामीण क्षेत्रों में त्रासदी आई है। लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और लोग कई लोग पानी के संरक्षण के लिए लापरवाही और अब तक इसका महत्व नहीं समझ पाए। जल संरक्षण को लेकर आज हमारे साथ में एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए। गायकवाड़ सर, मुबारक स्वागत है आपका।
साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपको हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बहुत बड़ी बात है कि उनके जन्मोत्सव में हम लोग जल संरक्षण को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। जी बोलिए।
सर, क्या जल संरक्षण को लेकर आज के वर्तमान परिवेश में किस तरीके के कदम उठाने की आवश्यकता है एक आम नागरिक को?
देखिए सर, प्रकृति का ये सबसे अनमोल उपहार है जल हमारे यहाँ। हालांकि ग्रामीण स्तर पर आज भी कई जगह पे जल का संरक्षण होता है, लेकिन उसके महत्व को जानने की जरूरत है। क्योंकि मुझे याद है, मैं जब बिलासपुर में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे जो वाटरमैन है राजेंद्र सिंह जी आए थे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने जिस तरीके से उनके इलाके में बताया था, कोई इलाका बताया था कि जहाँ पे कभी सब्जी नहीं होती थी, कई किलोमीटर से जल लाना पड़ता था, वहाँ पे उन्होंने समाज के साथ मिलकर जो जल संरक्षण का प्रयास किया। उनका संरक्षण का प्रयास कैसा था कि आपका बेटे का विवाह किसी दूसरे गांव की लड़की से भी होता है तो तब होगा जब आप उस गांव में तालाब बनाएंगे। तो ये जो नीति थी, ये मुझे बड़ी जबरदस्त लगी थी। उन्होंने उस माध्यम से इस तरीके से उनके इलाके में इतना जल का संरक्षण कर दिया था कि जो बेटियां पहले 10-10 किलोमीटर जाके गुंडे में पानी लाती थी, वो लड़कियां बाद में वहाँ इतनी अच्छी खेती होने लग गई कि वहाँ की लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बनी, और 35 करोड़ साल का सब्जी का मार्केट होता था बोले वहाँ पे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है राजस्थान वाला, और उसको उनके लिए उनको रेमन मैक्सेस अवार्ड भी मिला था राजेंद्र सिंह जी को, जिनको वाटरमैन कहा जाता है। तो अपने यहाँ पे भी है, जैसे भी गायमुख में हम लोग उस दिन नवचेतना जागरण के तहत हमारे क्लास के बच्चे जब गए थे, तो हमने गायमुख में देखा कि वहाँ जो जल संरक्षण का एक प्राकृतिक स्रोत है बहुत अच्छा है। और यहाँ वहाँ ये भी बताने में आया था कि वहाँ के जल के सेवन करने से कई तरह के असाध्य रोगों का निदान होता है। और वही नहीं, ऊटी काटा में जो काशी जल प्रबंधन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक पचमढ़ी साइड में है, क्या नाम याद नहीं आ रहा पा रहा, मतलब वो उनी पुनी ऐसा कुछ नाम है उसका। तो ये सब माध्यम जो है ना जल संरक्षण के हैं। और ऐसा नहीं है कि ग्रामीण स्तर के लोगों को जल के संरक्षण का महत्व नहीं पता, लेकिन उनके प्रयास के साथ साथ यदि गवर्नमेंट भी थोड़ा सहयोग कर दे, क्योंकि गांव के लोग अपने स्तर पे जल का संरक्षण करते हैं और बहुत अच्छा करते आ रहे, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते आ रहे। और हमारे यहाँ सायखेड़ा में भी जो बावली बोलते हैं, वहाँ पे पानी का मैंने देखा कि सीढ़ी नुमा कुआ है, वहाँ पानी रहता है। हमारे यहाँ पिपला के पास भी बावड़ी थी, लेकिन वो सब जो प्राकृतिक स्रोत थे कई जगह तो नष्ट कर दिए गए। यदि इनको फिर से पुनर्जागृत किया जाए तो जल संरक्षण बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और गांव के लोग उनकी उनकी आवश्यकता के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो मदद कर सकती है, ये प्रयास किया जा सकता है।
सर, क्या आपने प्रशासन का जो भी सरकार की योजनाओं के बारे में बात की? सर, सरकार की कई योजनाएं ऐसी बनी हुई हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन आज के परिदृश्य से देखा जाए तो सरकार अब वर्तमान में जो समस्या आ रही है उसको तुरंत में वर्तमान में कुछ कदम उठा रही है इसके प्रिपरेशन के लिए। सर, ये इसको किस तरीके देखते हैं, जो कि जो बरसात के दिनों में इसके लिए तैयारी करना था जल संरक्षण को लेकर, वो आज के वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है सरकार प्रशासन इस तरीके से कदम उठा रही है, तो सर जल संरक्षण को लेकर अभी किस तरीके से जो
देखिए,
परेशानी लोगों को आ
जैसे
रही है?
पिछले पिछले सरकार का जब राजीव गांधी जल प्रबंधन का जो एक कॉन्सेप्ट था, अवधारणा थी, उसमें ये था कि छोटे छोटे डैम बना के पानी के संग्रहण की व्यवस्था की। हमारे यहाँ जैसे घोघरा में है, कोपरावड़ी में किया गया, इधर सेमड़ा है मेरे पिपला के गांव के पास, वहाँ ये जो बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का। और केवल हम लोग सरकार के ऊपर निर्भर न रहे, अपने स्तर पे भी प्रयास करें, क्योंकि जब हम अपने स्तर पे प्रयास करते हैं तो हमारी बात सरकार तक पहुंचाने में हमको बहुत मदद मिलती है। और ऐसा नहीं है कि संरक्षण नहीं हो रहा है बिल्कुल। और अभी देखिए कलेक्टर साहब ने छिंदवाड़ा जिले को 22 जून तक के समय या वर्षा होने तक के समय के लिए जल अभाव जिला घोषित कर दिया। तो ये तो होगा ही, सरकार के प्रयास तो हो रहे, लेकिन एक बात एक है कि जनचेतना के अंतर्गत जैसे कन्हान नदी का रेत का उत्खनन हो रहा है, और कन्हान नदी के रेत का उत्खनन होने से या आसपास की नदियों के रेत का उत्खनन होने से जल संग्रहण की जो क्षमता, एक प्राकृतिक जो तरीका होता है पानी के मतलब जमा होने का, वो नहीं हो पा रहा। क्योंकि मैं अभी पिछले बार कन्हान नदी के वो लोलीखेड़ा गया था, तो मैं देखा कि किस तरीके से रेत के माध्यम से पूरी मिट्टी का जो स्तर है, जो उसके पानी को अवशोषित करने की जो क्षमता है, वो नष्ट हो रही साहब। तो ये देखिए, कोई व्यक्तिगत हितों को लेकर ऐसा रेत का उत्खनन कर रहा है, कन्हान को पूरा सुखा दिया गया साहब, तो ये तो होगा क्योंकि उसके रिजल्ट मिलेंगे। जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसके रिजल्ट अपने को तो मिलना ही है। तो ये प्रयास नियंत्रण का प्रयास सरकार का है, लेकिन सरकार नियंत्रण करे, लेकिन जन जागृति भी बहुत जरूरी है कि वो अपने आसपास की चीजों को सरकार से अवगत कराए। क्योंकि कन्हान का उत्खनन हो रहा है, रेत का उत्खनन हो रहा है, पानी का अभाव हो रहा है, क्योंकि आप देखिए 1200 1200 हजार हजार फीट पे पानी चला गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी देखिए पिछली बार की जो वर्षा हुई बहुत पानी हुआ, लेकिन उसका संग्रहण करने की जो प्राकृतिक जो प्रोसेस होती है जमीन की, वो नष्ट होती जा रही है ना, इसलिए ये सारी संकट की स्थितियां बनती जा रही है।
सर, ये आपने रेत उत्खनन कहा, शायद रेत उत्खनन और जो जो मैग्नेट खदाने हैं, इनके द्वारा जिससे से उत्खनन हो रहा है, इससे कितना असर पड़ रहा है जल स्तर पे, भूगर्भीय जल स्तर पे?
नहीं, इसका असर तो बहुत हो रहा है साहब। मेरा ये मानना है कि चलिए ये हम रॉयल्टी के अंतर्गत राजस्व के लिए ऐसा काम ठेका दे रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है उसमें कि ये जो उत्खनन का काम करते जो लोग भी वहाँ रेत निकालते मैग्नेट निकालते, ये अपने स्तर पे वहाँ पे जल संरक्षण के लिए इनको एक दायित्व दिया जाए कि वहाँ जैसे अभी मैं ये भूली वाले रास्ते से जाता हूँ, तो वहाँ जो पत्थर फोड़ के जो मतलब बनती है, मतलब वो गड्ढे बनते हैं, तो वहां पे वो लोग पानी जमा करवाते, तो क्यों नहीं इनके माध्यम से दायित्व का निर्वहन करवाया जाए। तो इससे क्या होगा, एक तरफ तो रेत निकलेगी, पर वो भी रेत उन लोगों के एक निश्चित दायरे के अंतर्गत दिया जाए, उसका सुनिश्चित मापदंड तय होना चाहिए बिल्कुल अवैध तरीके से। अभी अमरावती हम लोग देखते, हमारे रात को मैं जब क्लास से आता हूँ तो जो ट्रकों में इतना भारी अवैध मतलब ऐसा लगता है परिवहन होता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो इसके अंदर एक सीमा निर्धारण कर दी जाए, और जो ठेकेदार है जिन लोग के माध्यम से रेत निकाली जाती है, उसको एक सामाजिक दायित्व दिया जाए कि वो वृक्षारोपण करे। वृक्षारोपण के साथ साथ जमीन का जो गहरा कटाव हो रहा, अभी देखिए हमारे यहाँ कोपरावाड़ी में नदी ने इतना जमीन को काट दिया था कि वहाँ की कृषि योग्य भूमि मतलब जाती जा रही है, नदी का फैलाव होती जा रहा, वहाँ पानी नहीं रहता गर्मी के दिनों में, है ना। तो कन्हान के जहाँ भी लोग रेत उत्खनन करते हैं वहां पे ऐसा होना चाहिए। अभी जैसे कोयला खनन वाले देखिए, जब वहां से कोयला निकालना बंद हो जाता है तो उस जमीन को पाट देते, पाटने के बाद वहां वृक्षारोपण करते, तो उससे जमीन का कटाव नहीं होता। जमीन का कटाव नहीं होगा तो पानी को जो प्राकृतिक प्रोसेस है अवशोषण की, वो बहुत सही होगी, उससे जल का संग्रहण होगा, उसमें समस्या का निदान हो सकता है। पर इसमें जो मैंने बात कहा कि ये ठेकेदार जो लोग रेत का उत्खनन करते हैं, इनको ये दायित्व दिया जाए, एक जिम्मेदारी उसमें कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत डाल दी जाए कि वो वृक्षारोपण करवाए वहां के आसपास के इलाके में, और पानी के संरक्षण के लिए अपने स्तर पे ऐसा कोई प्रयास करे, तो नदी भी बचेगी, रेत का अवैध उत्खनन भी नहीं होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होगी साहब, छिंदवाड़ा जिले में सौंसर हमारा इतना अच्छा था, पानी को कोई समस्या नहीं थी। अब देखिए 3 दिन बाद 4 दिन बाद नल आने वाली व्यवस्था हो गई है, जबकि पहले इतना पानी था। देवनाथ जी चोरी जी ने जिस हिसाब से यहाँ प्रयास किया, टंकियां बनवा के लोगों के घर घर तक पानी पहुंचा, तो वो समय और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। राजनीति की इच्छा शक्ति में थोड़ा सा बदलाव आया है, उसकी वजह से ये सब कमियां सामने आ रही है, और इसका रिजल्ट हमको वैसे ही मिलेगा जैसे कोरोना में हमको अपने किए गए कर्मों का फल मिला। जी
जी सर, क्या आपने जिस तरीके से जो अवैध उत्खनन हुआ रेत का, तो उसके कारण सर कई और भी किसान हैं जो बहुत प्रभावित हुए हैं। डंगरे की फसल आज आप जो वर्तमान बीते 2 वर्षों पहले जो कुछ भाव में लेते थे, आज आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा सर। कितना देखते इसको प्रभावित हो रहा है किसानों का?
ये इसका असर तो हर चीज पे पड़ेगा साहब। वो मतलब अभी मैं सावनेर साइड वो कोची गांव है खापा उधर गया था, तो वो जो वहां गया था उटीकाटा के जो पीछे का सुगना नाला का जो इलाका देखा मैंने, तो जिस तरीके से एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए जो प्राकृतिक आर्थिक उपार्जन का माध्यम था डंगरे की खेती तरबूजे खेती, वो प्रभावित हुई है, वो वर्ग भी प्रभावित हो गया। मतलब आने वाले समय में रोजगार का संकट इनके सामने भी खड़ा होगा। ये चीजों के ये देखिए कानूनी पक्ष है, कानूनी पक्ष के लिए प्रशासन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। या प्रशासन नहीं जानता कि ये सब चीजें हो रही है, जानता है लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में ये सब काम कदम उठाए नहीं जा रहे। अब रिजल्ट मिलने लग गए। अभी देखिए टेम्परेचर इतना बढ़ गया हमारे यहाँ पे कि 12 बजे झुलसे जैसा लगता है। तो इसका रीजन क्या है? हमारे जो प्राकृतिक स्रोत है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे नदियों का स्तर हो, ये सब मतलब उसमें कमी आती जा रही। तो उसका प्रभाव हमको दिखता है कि 40 से ऊपर का टेम्परेचर आ गया सब अभी, और अभी सिर्फ अप्रैल चल रहा है। जी
सर, ये वृक्षारोपण बहुत से होते हैं, सर आप हमें ये बताइए कि वृक्षारोपण के साथ साथ उनके संरक्षण के लिए कितने प्रयास हो रहे हैं?
नहीं, अभी एक सरकार का एक प्रयास तो मुझे अच्छा लगा कि जो जैसे जुलाई माह में जब वर्षा होती है तो वो वन महोत्सव मतलब वे वृक्षारोपण महोत्सव मनाती, तो उससे बहुत सारे पौधों का निर्माण तो हुआ है, हमारा जो हरियाली का स्तर बढ़ा है। लेकिन ये काम केवल सरकार के स्तर पे ना हो, जैसे हम लोग अपनी संस्था या बच्चों के माध्यम से हमने उन्हें कहा कि भाई जन्मदिन जब मनाते हो तो हम लोग एक पौधा जरूर लगाए, ये बात मैं बच्चों तक पहुंचाता हूँ, उनके तक ये भी बात पहुंचाता हूँ कि अभी बहुत सारे पशु पक्षी जो है पानी के अभाव में उनका निधन हो जाता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई घर में एक अपना, जैसे मेरे खुद के घर में मैंने एक मिट्टी का कटोरा और कुछ साइड में अनाज और पानी रखा है, और मैं सब बच्चों को भी बताता हूँ क्योंकि कुछ काम तो हमको भी करने हैं, हर काम सरकार नहीं कर सकती ना। कई ऐसे क्षेत्र है भारत में जहाँ पे लोगों ने स्वयं के प्रयासों से बहुत अच्छे काम किए सामुदायिक, जैसे मैंने आपको कहा ना राजेंद्र सिंह जी का वो इलाका जहाँ पे आज सालाना 35 करोड़ की सब्जी होती है, जहाँ की लड़कियां 10 किलोमीटर पानी लेने जाती थी, आज वो लड़के डॉक्टर इंजीनियर बन रही क्योंकि पानी लाने जाना नहीं पड़ा। अभी कलेक्टर साहब का मैंने सुना था कि जो पाताल कोट है वहाँ कोई झील है, वहां से पानी उनके गाँव तक पहुंचा गया। तो वहाँ पाताल कोट के जो ग्रामीण इलाके के गाँव के लोग थे उनके लिए नल से पानी उनके घर तक पहुंचा, तो उनके लिए एक उत्सव का माहौल था क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो ये प्रशासनिक स्तर पर सत्ता के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं, तो इनको जैसे कलेक्टर साहब का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और मैं इस आकाशवाणी के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया। पिछले जो निकुंज श्रीवास्तव जी थे उन्होंने फ्लाइंग मतलब वो वहाँ कार्यक्रम करा के वहाँ के लोगों को रोजगार दिया, तो ये सत्ता और शक्ति का बहुत अच्छा तालमेल है और ऐसा कर सकते थे लोग, सहयोग करते, जन सहभागिता होती है। हम लोग राजनीति को छोड़ दें, वो कुछ लोगों को छोड़ दें जो केवल अपने व्यक्तिगत हितों को लेकर ही लगे हैं, पर जनता सहयोग करती है, करती है, और कई जगह ऐसा देखने में आया कि बहुत अच्छा प्रयास हो रहा
वृक्षारोपण संरक्षण के लिए बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और आज जिस तरीके से जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो जल संरक्षण के लिए या जल से अभी भी त्रासदी है, उनके लिए एक आखिरी संदेश आपका कि जल को आज किस तरीके से बचाए ताकि आने वाले परिदृश्य को ना देखना पड़े?
देखिए उसको हम लोग थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि से देखिए, अभी आज जन्म हनुमान जी का जन्म उत्सव है और हनुमान जी की जो जल निकलता है नाभि से जो जल निकलता है और उसके प्रति जो पवित्रता की भावना रहती है वहां पे एक बूंद भी हम गिरने नहीं देते, तो वो हनुमान जी के नाभि से निकलने वाला जल जो एक अमृत की तरह लोग समझते हैं कि इससे एक उनका भाव या आस्था है कि जल से कई सारे रोग ठीक होते, मानसिक सुकून मिलता है, तो वो वाली बात हम लोग जनमानस तक पहुंचाए। ग्रहण करते तो प्रसाद का एक एक दाना हम लोग उसको अन्न का महत्व समझते, लेकिन हम जब शादियों में भोजन लेते हैं तो वहाँ कितना सारा भोजन खराब होता है, तो ये उसको एक प्रसाद के रूप में समझे पानी को, और उसको पानी को केवल जितना आवश्यक है, आवश्यकता तो लगेगी एक निश्चित व्यक्ति को इतना इतना मतलब एक पैमाना रहता पानी लगता है, लेकिन हम अपनी आवश्यकता को समझे, क्योंकि राजेंद्र सिंह जी की बात याद आती है, वो कहते थे कि राजस्थान में लोग गीला कपड़ा करके बदन पोंछते थे, और क्या खटिया के ऊपर नहाते थे और खटिया के नीचे का जो पानी रहता था उस वो पानी कहीं और यूज करते थे। ये चीज ना हो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छे हैं, बस हमको अपने स्तर पे थोड़े प्रयास करना। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह डैम कर दी है, तो बड़े बड़े डैम भी बन गए हैं, जैसे अम्बेडकर जलाशय इधर सेमड़ा साइड है, इधर मारू तीगांव साइड है, बांध मोगांव साइड है, आपके संसद के बाजू में वागेनाल ये है। लेकिन साथ में ये भी रखे कि जैसे केरल सरकार ने किया है कि जब आप घर बनाओगे तो आपके घर के इसमें टैंक जरूरी है पानी के संरक्षण के लिए। जो जैसे मैं पांडुना में जाकर क्लास लेता हूँ, वहाँ कुहार साहब के यहाँ मेरी जाकर क्लास लेती, उन्होंने ऐसा टैंक बनाया है, तो ये टैंक की अनिवार्यता सभी जगह उतर ले, क्योंकि बरसात में जो छत का पानी हम लोग उस टैंक में ले ले तो शायद इससे जल संग्रहण बढ़ेगा और जमीनी स्तर पे जब उसका अवशोषण होगा तो आसपास के इलाके में पानी बढ़ता है। सब ये प्राकृतिक प्रक्रिया है।
जी सर, तो ये थे मधुकर सर जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से जल संरक्षण को लेकर मोबाइल वाणी पर राय की। मधुकर सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर।
नमस्कार, सबका दोस्त।